ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू गेट रिड ऑफ अनर्थास इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस. यू आर आस्किंग द मोस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन क्वेश्चन. लेकिन जो भी हमने अभी तक सुना है उसके आधार पर उत्तर दे सकते हैं. ये जो अपने अनर्थों का निकास करना जो प्रक्रिया है ये 100% प्रिवेंटिव ही है. मतलब अगर हम सोचेंगे कि अभी मेरे को प्रोवोकिंग कंडीशन आ गया और मुझे कैसे कंट्रोल करना है तो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको. जैसे अगर आप टाइफाइड के एरिया में गए जहाँ पर टाइफाइड हो रहा है सब लोगों को, या मलेरिया के एरिया में गए जहाँ सबको मलेरिया हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं और वो मच्छरों से आपको मलेरिया हो रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे तो बाद में मलेरिया से झगड़ा करना कोशिश करेंगे तो मलेरिया आपको होगा ही होगा. वहाँ का पानी पियेंगे आपको टाइफाइड होगा ही होगा. तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, उस स्थिति में जाने के पहले आपको लस लेना है उसका, टाइफाइड का, कॉलरा का. तो फिर आप जाएंगे तो आपको फिर वो प्रोवोकिंग कंडीशन होगा, उत्तेजक स्थिति होगी आपके लिए, फिर भी आपको टाइफाइड नहीं होगा या मलेरिया भी नहीं होगा. तो जब उत्तेजक स्थिति आपके अंदर आपके सामने प्रस्तुत होती है और आपको उसका सामना करना है तो उसके लिए पहली प्रैक्टिस ही आपको काम आती है. इसलिए लगातार साधना करते रहना बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सिंसियरली, और साधना में भगवान के नाम की प्रार्थना करते रहना ये ज़रूरी है. और आपको अगर विशेष लगता है कि मैं मुझे गुस्सा आता है या मुझे द्वेष उत्पन्न होता है किसी के प्रति, हाँ ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है किसी का यश देखकर, किसी का कीर्ति देखकर और किसी का पैसा देखकर, अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपके अंदर ये दुर्गुण है तो सबसे पहले ये आपके अंदर ये दुर्गुण है ये समझना ये भगवान की कृपा है. क्योंकि बहुत लोगों को समझता ही नहीं है कि उनके अंदर ये दुर्गुण है. और अगर आपको समझ में आया है तो उस पर आपको गौर करना होगा. अगर आपको समझ में आया कि हाँ मुझके अंदर एनवी है, जब भी किसी का गौरव होता है तो मुझे अंदर से तकलीफ होती है, अगर आप प्रामाणिक है खुद से तो आपको फिर नित्य रूप से जप करते समय भगवान के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे कृपा करके इस अनर्थ से मुक्त करो. कल मैं इस अनर्थ का जब सामना हुआ तो फेल हो गई थी, परसों भी फेल हो गई थी, आज भी अगर ऐसा प्रसंग आता है तो मुझे आज फेल नहीं होना है, प्लीज़ आप मुझे सहायता कीजिए. जितना आपकी प्रार्थना गहरी होगी, जितनी आपकी प्रार्थना प्रामाणिक होगी, सिंसियर होगी, हृदय से निकली होगी, उतना आपको उसका तुरंत जवाब मिलेगा. और समझो आपको आज के परीक्षा में आप पास हो गए समझो, तो पहला भावना क्या होती है, देखो मैं आज पास हो गया. उस समय आपको तुरंत ये जानना चाहिए कि मैं पास नहीं हुआ, आज कृपा हुई इसलिए ऐसे हुआ. अगर मैं आज के यश पर गर्व करूँगा तो कल दोबारा फेल हो जाऊँगा. इसलिए भक्त का जीवन कैसे होता है, भक्त का जीवन उसके जीवन में वो जो भी प्राप्त करता है इस स्तर पर, पैसा पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अनर्थों पर विजय, नाम रुचि, वैष्णवों की सेवा, जीव दया, इन जस गुणों को जब प्राप्त करता है तो भक्त को कभी भी मानना नहीं चाहिए कि ये मैंने प्राप्त किए हुए गुण है, ये मेरी मेहनत का फल है. मेहनत तो आपको करना ही है लेकिन आपको ये जानना है कि आपकी मेहनत कभी भी पर्याप्त नहीं है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए. आपका काम के लिए केवल आपका 100% मेहनत करना आपका काम है बस. और आपका 100% मेहनत कभी भी उस प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा, ये भी आपको जानना चाहिए. इसलिए हमारा जीवन यहाँ का बहुत भाग्यशाली जीवन है क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्टली भगवान की सेवा करने का ही मौका मिल रहा है नौकरी के रूप में. और उस नौकरी करते समय बहुत सारे अनुभूतियाँ और साक्षात्कार भी प्राप्त करने का अवसर मिलता है और उसके लिए गाइडेंस भी मिलता है अनेक अनेक प्रकार से। तो मेरा ये विचार है कि अधिकतर समय पर आपका जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है ना वही काम आएगा और धीरे धीरे आपके प्रसंगों में अंतर आते जाएगा कि हाँ जब मैं 11वीं में था कॉलेज में तो मेरा क्रोध जितना था उतना आज नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। फिर आपको लगेगा कि शादी के पहले साल में जब जितना मैं इरिटेबल था पत्नी के साथ में अभी नहीं हूँ। तो वो साधना के अनुसार आपको धीरे धीरे उसका फल मिलेगा। और जब ये अनर्थ आपके सामने आते हैं ये भी आपको जानना चाहिए, अनर्थों के साथ में युद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और उसमें पेशेंस भी होना चाहिए। आपको लगेगा कि कल तक मुझे गुस्सा था आज से गुस्सा बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो उसको धीरे 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 पुराना होता है ना रोग, पुराना रोग बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने के लिए, छोटे मोटे रोग जल्दी अच्छे हो जाते हैं, पुराने रोग बहुत टाइम लगता है, जितना रोग पुराना उतना टाइम ज़्यादा। हमारा तो जन्म जन्मांतर का ये रोग है ना, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है श्रवण करना, इसके विषय में जो भी मार्गदर्शन मिलता है उसको एक प्रामाणिक हृदय से श्रवण करना, नम्रता से कि हाँ ये मेरे लिए कहा जा रहा है। अक्सर क्या होता है जब ऐसे प्रवचन होते हैं आप सुनते हैं कि यस ये हृदय के लिए कहा गया है, उसको ये सुनना चाहिए था, ये गौरांगी के लिए है, ये सुनना चाहिए था उसको। लेकिन ऐसा सोच के आपको कभी लाभ नहीं होगा उसका। जब भी इसके बारे में अनर्थों के बारे में चर्चा होती है आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए ही कहा जा रहा है। आपको अगर लगता भी होगा कि मैं काफ़ी हद तक मेरे क्रोध पर काबू पा चुका हूँ, फिर भी आपको लगना चाहिए कि मेरे लिए ही कहा गया है। अगर जिस समय आपको लगा कि मैंने इस पर काबू प्राप्त कर लिया उसी समय आपका काबू नष्ट हो जाता है, अगर वो है तो उसी समय आपको सामने ऐसा उदाहरण भगवान करके देंगे देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। इसलिए एक चीज़ है कि धन प्राप्ति का श्रेय लेना कि मैंने देखो इतना मेहनत किया और धन लाया, वो एक जगह पर है और ये श्रेय दूसरी जगह पर है कि मैंने क्रोध पर आज विजय पाया और आज मैंने इस चीज़ को ना कहा और आज को मेरे सामने इतने अन्न पदार्थ आए थे फिर मैंने उसको ना बता दिया क्योंकि मेरा व्रत है आज। तो ये सब पे गर्व करना और या तो अपने ऊपर श्रेय लेना ये भक्त के लिए बहुत डेंजरस बात है। इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि सात्विक भावना में साधना करते रहना। सात्विक भावना में साधना का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी, सातत्य। उसके अंदर कोई हमारा साधना कैसा होता है, अप एंड डाउन होता है हमारा। आज जो भी 5 बजे उठ गए 7 बजे के जब फिनिश किया और कल 7:30 को उठे तो एक भी मला नहीं किया, अगले दिन वापस 6:30 को उठे 12 मालाओं करके आए, फिर तो परसों के दिन 0 माला करके आए। तो इसको रजोगुण कहते हैं। कभी कुछ मूड आया तो एकदम 3 बजे उठ के 24 माला करके फिनिश हो गया। तो सात्विक माला सात्विक का जप का मतलब है साधना का कि हमको ये भी होता है ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी एक पेस होना चाहिए जो कंसिस्टेंट है हमारे अंदर कि ये इतना तो मुझे करना ही करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी हो जाए तो 5 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे सोए तो 5 बजे उठ जाते हैं। वो जो है ना वो बहुत श्रेष्ठ बात है एक्चुअली। तो वो उसके लिए भी बहुत ही प्रार्थना करनी पड़ती है और लगातार हिम्मत न हार कर ना उम्मीद न होकर ये करते रहना चाहिए। आपको लगेगा अरे इस जन्म में तो मुझे क्रोध पे कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्यों करना है सब मेहनत, ये इसको फॉल्स ईगो कहते हैं, ये नम्रता नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि ये जीवन में तो भगवान का धाम तो मिलना ही नहीं है, क्यों करना है सब जब कुछ करके, मुझे तो मेरी तो इतना पतित हूँ कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ऐसे बोलना भी फॉल्स ईगो है। क्योंकि आप अपने आप को पतित समझते हो ये एक्चुअली फॉल्स ईगो का एक झूठा प्रस्तुति है। लेकिन कितना भी हमारे अंदर अनर्थ हो भगवान पे नाम पर श्रद्धा होना और भगवान का नाम मुझे बचाएगा इस पर श्रद्धा होना ये नम्रता है। मेरी शक्ति नहीं है लेकिन भगवान के नाम पर मुझे विश्वास है। मैं दुर्बल हूँ, भगवान का नाम सबल है, ये नम्रता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ और भगवान का नाम मुझे कुछ नहीं कर सकता है। मैं इतना पापी हूँ कि भगवान का नाम मुझे तार नहीं सकता है, ये फॉल्स ईगो है। ये नम्रता नहीं है। आई एम सो फॉलन यू नो इन द होली नेम कैन नॉट हेल्प मी, नोबडी कैन हेल्प मी, इवन गुरु महाराज कैन नॉट अपलिफ्ट मी, ऐसे सोचना भी फॉल्स ईगो है। आई एम समथिंग विच इज यू ऑल्सो कैन नॉट हेल्प मी, सोचना भी एक दर्प, दर्प कहते हैं, दर्प मतलब दर्पोक्ति यानी प्राउड स्टेटमेंट, एरोगेंट स्टेटमेंट। दूसरा प्रश्न आपका था कि जो लोग दर्द में होते हैं, क्या क्या पूछा आपने?
दर्द में या पेशेंट क्रॉनिक नहीं, पेशेंट
को बहुत सारे दुख हैं,
बहुत सारे दुख हैं, पेरेंट्स रिलेटिव्स को इसका ये वरी है कि मेरे आगे क्या होगा।
उनको कभी भी आपको नंबर वन ये नहीं बताना है कि ये सब आपके पिछले कर्मों का फल है। मरीज या हम भी और आप भी, आपके सामने आएंगे ना दर्द में, तो आपको कभी ये बताना नहीं है कि ये आपके पापों का कर्म फल है। हालांकि ये सच है, लेकिन फिर भी ये सत्य उसको मैं उसको बताना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रेम, प्रेम से अगर आप उनको बताएंगे कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, ये भी कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उससे क्या होता है ना, आपको वो लोगों का दर्द कितना गहरा है वो सोच के सब बोलना चाहिए। इसलिए ये प्रश्न पर एक्चुअली जवाब देना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल वो केस हमारे सामने आ जाए स्पेसिफिक। हाँ, कितने हद पर उनकी तैयारी है सुनने की, वो भी जज करना ज़रूरी है। अगर मैं वो ऐसे आते ही बोलेंगे इतना तकलीफ है, इधर ये तकलीफ हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना भगवान का नाम जब किया कुछ नहीं हुआ, तो आप नहीं बोल सकते उसको कि ये जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो ऑलरेडी भगवान से उखड़े हुए हैं, तो आप उसको नहीं बोल सकते कि ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, तो और उनका श्रद्धा टूट जाएगा। तो हम लोग को उनको हौसला देना चाहिए कि आप धीरज रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, आप भगवान का नाम जप कीजिए। बहुत लोगों को जीवन में कष्ट है, उन्होंने भगवान का नाम करके इस कष्ट पर उपाय पाया है या तो शांति पाई है, कष्ट के होते हुए भी कैसे सहना है ये सीख लिया है। ये हम नहीं कहते कि आप जप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं, कभी कहना भी नहीं चाहिए कि आप जप करो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आप जप करो आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, आप जप करो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं ना, आप ये मंत्र का जप करो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, चलने लगेगी, ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सत्य नहीं होगा तो क्या होगा फिर? सत्य होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर सत्य नहीं होगा, क्योंकि भगवान का नाम उसके लिए नहीं दिया गया हमको कि आपका लेप्रोसी ठीक हो जाए, आपका टीबी ठीक हो जाए, आपका हार्ट डिसीज ठीक हो जाए, इसलिए भगवान का नाम नहीं दिया गया है। भगवान का नाम आपको जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए दिया गया है। जैसे बोलते हैं वो, आप हार्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने आपका हार्ट का तकलीफ दूर कर दिया, तो आपको लगेगा कि इसको किडनी का तकलीफ भी, उसको पूछते हैं ये भी ठीक कर देगा ना सर, तो पैर में भी एक फोड़ा आ गया, वो ठीक कर सकते क्या आप? लेकिन वो हार्ट डॉक्टर है, वो थोड़ी आपको। तो उसी तरह से भगवान का नाम हमको किस लिए दिया गया है ये आपको बताओ। ऑफकोर्स भगवान का नाम सर्व औषधि है, लेकिन भगवान के नाम से ये अपेक्षा करना कि मेरा पैसा भी मेरे को आ जाए, गरीबी दूर हो जाए, बीमारी भी दूर हो जाए और मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, ये अपेक्षा करना गलत है। जैसे आप अभी, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत बिजी हूँ और बहुत मेरे को टाइम नहीं है, और कोई आदमी बोल रहा है प्रभु जी मुझे ज़रा 500 रुपये हेल्प करो ना, तो मुझे लगे मुझे क्यों तक परेशान कर रहे हैं, कितने लोग हैं ना ये 500 रुपये आपको देने के लिए, मुझे क्यों इतने बीच में आके परेशान कर रहे हो। जैसे भगवान का नाम आपको जन्म मृत्यु की साइकिल से मुक्त कर सकता है, और आप उसको भगवान के नाम को बोल रहे हो कि मेरा टीबी ठीक करो, मेरा गरीबी दूर करो, मेरे बच्चे को ठीक करो, तो ये मूर्खता होगी ना एक्चुअली, कि मैं कर कुछ बहुत सकता हूँ लेकिन मुझे पूछा जा रहा है कि ये करो, तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन लगा क्या कि क्या ये क्यों पूछ रहे हैं, वो क्यों नहीं पूछते जो मैं कर सकता हूँ। उसको कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। इसलिए उनको भगवान के नाम की साधना के ऊपर थोड़ा सा प्रचार कर सकते हैं आप, और कुछ लोगों के उदाहरण दे सकते हैं कि देखो इन्होंने, इनको भी ऐसा ही हुआ था, इन्होंने इसको कैसे सामना किया उसका, और कैसे हमको जो भी होता है उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने को सीखना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें जीवन में बदल नहीं सकती है, उसको एक्सेप्ट करके उसी तरह जीना चाहिए, क्योंकि तो हमको पता चलता है कितना भी गरीब आदमी हो ना, कितना भी अनपढ़ आदमी हो, उसको कुछ से समझ में आ जाए कि ये चीज़ बदल नहीं सकती है। जैसे कि मेरा पति का स्वभाव वो बदल नहीं सकता है, या मेरी पत्नी का स्वभाव वो बदल नहीं सकता है, या मेरी आमदनी, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन, मेरी सासू का स्वभाव, कुछ चीज़ें ऐसी कि मालूम है कि इसको भी एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा मुझे, इसको नहीं अच्छा लगता है मुझे, ऐसे करके तोड़ नहीं सकते हम, कुछ कुछ चीज़ें हमको स्वीकार करनी पड़ती है। तो ये स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का जप जो है वो सहायता करता है, ये उसको बता सकते हैं। आपको वो आत्मबल प्राप्त होगा जीवन की चीज़ों को सहन करने के, क्योंकि जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मन के विरुद्ध होती है। हमने सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हमने सोचा था कि हमको अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और सुंदर बालक होगा, फिर हम लोग उसको बड़ा करेंगे, आनंद लेंगे, उसको खिलाएंगे, खेलेंगे उसके साथ में, फिर वो माता को फिर वो ऐसा बालक होता है, तो वो सोच सकती नहीं, कह रहे ऐसा मैं उम्मीद नहीं की थी, कुछ भी तो नहीं हुआ था ऐसे, लेकिन ये तो अलग ही रिजल्ट आया उसका। तो ऐसे सोचते और प्लान करते हम कुछ और हैं और अचानक ऐसे घटना होती है जो बिल्कुल उसके विरुद्ध होती है, तो उसको स्वीकार जीवन में करना ही होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं जीवन में होती रहती है। अब ये सुंदर स्त्री से आपने विवाह किया, आपको लगा जीवन कितना आनंदमय होगा, अभी उसको चेहरे को देखते ही मैं जीवन बिताते रहूँगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन उसको कैंसर हो जाता है, फिर क्या करेंगे आप? अरे अभी तो मेरा जो योजना थी वो फेल हो गई, अब मैं उसको सुंदरता को कहाँ देखूँगा, कहाँ ढूँढूँगा अभी वो, अरे तो सुंदर कहाँ गया, फोटो देखूँगा पुराना तो भी झूठा है वो, तो सत्य नहीं है। तो ऐसे अनपेक्षित घटनाएं जीवन में होती रहती है, इसलिए हम उसको छोड़ के भाग नहीं जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को स्वीकार करना ही पड़ता है, कई जीवन में चीज़ें होती हैं ऐसी। भगवान को बीच में न लाते हुए आप लोग उनको बोल सकते हैं, और भगवान का अगर वो सुनने को तैयार हैं तो उनको कहना है बाद में, फिर अगर भगवान जो कुछ करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। मैं भी आपको एक मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ कि कैसे हम भगवान को कोसते हैं, जब उनको पता चलता है कि अरे एक्चुअली हमारे अच्छे लिए हुआ था, तो हम लोग वो कोसने का काम जो है वो छोड़कर धन्यवाद करने लगते हैं। होपफुली मुझे तुरंत वो मैसेज मिलेगा, ऐसे उम्मीद है मेरी। अरे एक प्रणाम।